ओम शांति। एक मदारी था जिसके पास एक बंदर था और वो बंदर बहुत वफादार था, बहुत प्यारा था। वो मदारी उस बंदर को रोज सुबह 4 रोटियां देता था और शाम को 3 रोटियां देता था। एक दिन रोटी थोड़ी कम बनी तो उस मदारी ने उस बंदर को सुबह 4 की जगह 3 रोटियां दी, परंतु बंदर एकदम से नाराज हो गया। उसने रोटियां फेंक दी क्योंकि रोज वो सुबह कितनी खाता था, 4, और आज उसके 3 दे दी तो एकदम से उसने मुंह टेढ़ा कर लिया, बहुत ही नाखुश, बहुत ही उदास, नाराजी हो गया एकदम, और रोटी भी फेंक दी। फिर बहुत उसको मनाया, समझाया, तब जाके उसने 3 रोटी खाई। वो बंदर रात में 3 रोटियां लेता था तो मदारी ने सोचा क्योंकि दिन में सुबह उसे 3 रोटी मिली तो क्यों ना इसे शाम में 4 रोटियां दी जाए। तो उसने उस बंदर को शाम में 4 रोटियां दी, परंतु बंदर फिर नाराज हो गया और उसने फिर से सारी रोटियां फेंक दी। क्यों? क्योंकि उसे 3 रोटियां रोज मिलती थी और आज 4 मिल गई। तो उस मदारी ने बंदर को बहुत समझाया, गणित सिखाया कि 4 सुबह और 3 शाम को, या फिर 3 सुबह और 4 शाम को, आखिर तो गणित के हिसाब से तो उतना ही है 7, परंतु वो बंदर नहीं माना। फिर से उस मदारी को उसको वैसा ही खिलाना पड़ा जैसे वो पहले खिलाता था, सुबह 4 रोटियां और शाम को 3 रोटियां। मनुष्य का मन जो है वो भी इसी बंदर के मन की तरह है। उसे जो भी आदत डाल दो वो वही स्वीकार करता है, वही उसे अच्छा लगता है। जो भी चिंतन, जो भी तर्क, जो भी विचार, जो भी संकल्प, जो भी संस्कार, जो भी आदतें, जो भी स्वभाव एक बार बन जाता है, एक बार वो स्वीकार कर लेता है तो बाद में उसे बस वही अच्छा लगता है। जरा भी उसमें कम ज्यादा हो तो नाराज होता है, और यदि उसे समझाया जाए बैठकर कि पूरा हिसाब तो ऐसा ही है, परंतु वो हिसाब स्वीकार नहीं करता। क्या हम मन को खिला रहे हैं? कौन सी कल्पना, कौन से स्वप्न, कौन सी अपेक्षाएं, कौन से भाव, कौन सी भावनाएं उसे हम खिला रहे हैं, उसे हम दे रहे हैं? वो उसी को स्वीकार करता है। और यदि वो निगेटिव है, यदि वो गलत है और लंबे समय से उसने उसी का सेवन किया है, यदि वो दुख की है, यदि वो डिप्रेशन की है, फ्रस्ट्रेशन की है भावना, तो उसको उसी में अच्छा लगता है, उसी में वो रमन करता है। अच्छे लगने के पीछे दुख तो रहता है, ये भाव भी रहता है कि इससे बाहर निकलना है, परंतु क्योंकि लंबा समय वो चीज, वो भाव, वो संस्कार, वो स्वभाव चला है, इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। ज्ञान की बहुत सारी बातें उसे सुनाई देती है, वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इस तरह का ये भाव नहीं होना चाहिए। पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है इस तरह की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये संस्कार नहीं होना चाहिए। तो उस बंदर ने विद्रोह कर दिया। जैसे उसे कितना भी समझाया कि टोटल साथ ही हो रही है, परंतु वो नहीं माना। वो तब तक नाखुश रहा जब तक उसे वैसी ही रोटी न दी गई जैसे पहले दी जा रही थी, और जब पहले जैसी रोटी उसे मिली तब कहीं वो फिर से खुश हो गया। मन केवल तर्क की भाषा नहीं समझता। यदि मन को बताया जाए ये करना है ये नहीं करना, ये डूज है ये डोंट्स है, ये श्रीमत है ये श्रीमत नहीं है, केवल इतना पर्याप्त नहीं है। मन उसे स्वीकार करे, उसे माने, उसके लिए समय चाहिए, एकांत चाहिए, थोड़ा मौन चाहिए, एकांत में चिंतन चाहिए, स्वयं से बातें चाहिए, अपने ही मन को बैठकर कोई भी चीज, चाहे कोई ज्ञान की बातें हो, धारणा की बातें, योग की बातें, समय चाहिए जो हम बैठकर उसको समझाएं कि ये 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 ऐसा है। उसे पता चल गया वो कुछ कर रहा है, बहुत लंबा उस रास्ते पर निकल गया और जो मार्ग गलत है, और एक दिन उसे पता चलता है या जाते समय भी पता रहता है ये गलत है, परंतु फिर भी कोई एक अज्ञात सा फोर्स उसे ले जाता है। बीच में इतना साहस तब आएगा जब मन कन्विंस हो जाए पूरी तरह से कि ये मार्ग गलत है, और फिर वहां से टर्न होकर पीछे लौटे। अध्यात्म की यात्रा है कि जिस मार्ग पर जा रहे हो और जब पता चले कि ये मार्ग गलत है, रुकना और इतना साहस और धैर्य हो कि हम पीछे मुड़ जाए और वापस आ जाए उस मार्ग पर जहां हमें चलना चाहिए था। तो मन को समझना है कैसे वो काम करता है, कैसे आदतें पड़ गई। जो व्यक्ति रोज काम करता है, रोज काम करता है, यदि 10 दिन तक उसे कोई काम ना दिए जाए तो 11वां दिन वो कुछ काम नहीं करना चाहता। जो रोज योग करने वाले हैं, 10 दिन योग से मुक्त हो जाए, 11वां दिन योग में रुचि कम हो जाती है स्वतः ही, क्योंकि उस 10 दिनों में बुद्धि किन्हीं और चीजों में लग गई। आज ही सुबह एक बहन मिले थे, संसार में रहते हैं, गृहस्थी में, यंग है, कह रहे थे कि योग और ज्ञान एकदम निरस हो गया है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, ना अमृत वेला उठने की इच्छा होती है, मुरली में तो बस वही वही लगता है, वही सारी सुनी हुई बातें सुन सुन के कुछ इच्छा ही नहीं होती है सुनने की। क्यों हो गया ऐसा? और इन्हीं को हमने एक साल जब पहले मिले थे तो क्या करूं और क्या नहीं करूं, इतना बहुत उमंग उत्साह था। अभी उसको ये भी याद नहीं कि लास्ट अमृत वेला कब किया था। ऐसा क्यों हो रहा है? जीवन में डिस्टर्बेंस आता है, विघ्न आते हैं, उसी समय पर व्यक्ति ज्ञान और योग को छोड़ता है, जबकि उसी समय सबसे ज्यादा करना चाहिए। और दो चीजों से डिस्टर्बेंस आएंगे, व्यक्ति से और परिस्थितियों से, व्यक्ति से और उनके स्वभाव से, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है एक रीति से, पर होगा। तो हम बात कर रहे थे मन को समझने की, मन को समझाने की। कल की जो अव्यक्त वाणी थी संडे की, आधी मुरली तो कल रात पांडव भवन शांति स्तंभ पर विस्तार से चर्चा हुई, एक भाग उसका रह गया था, आदि रत्नों से मुलाकात, जो आमंत्रित गेस्ट थे उनसे बाबा ने कुछ रूहान की। उसमें लगभग ऐसी 12 बातें हैं और वो 12 के 12 बातें समान हैं। जैसे हमने कहा, मन उनको यदि स्वीकार कर ले तो उसी की उसको आदत पड़ जाएगी और उसी स्वरूप में वो स्थित हो जाएगा, परंतु मन यदि उसे स्वीकार ना करे तो उसकी जो पहली आदत है वही उसको अच्छी लगेगी, जरा भी वो चेंज नहीं चाहता। 3 रोटियां तो उसको 3 ही चाहिए और 4 तो 4 ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। वही व्यक्ति अपनी फिक्स दिनचर्या रखता है, जरा भी उसमें परिवर्तन नहीं चाहता, जबकि पता चल रहा है कि ये जो दिनचर्या है ये योगियों की दिनचर्या नहीं है। अमृत वेला कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, अमृत वेला हो गया उसके बाद में सीधा नींद, जबकि वो समय चिंतन का है, मनन का है, अध्ययन का है, प्रकृति के साथ रहने का है, स्वयं से बातें करने का है, थोड़ा सा चर्चा करने का है। मुरली में भी खास कोई रस नहीं, मुरली आ रही है मुरली जा रही है, कितनी आ गई और कितनी हाथों से चली गई, हमारे हाथ खाली रह गए, उसमें से कुछ चीजों को हमने पकड़ा ही नहीं। कल बाबा ने क्या कहा, ज्ञान रत्नों के साथ क्या करो, खेलना, दूसरा पलना, स्वयं की पालना करना, तीसरा झूलना, चौथा कार्य में लगाना, पांचवा गिनते रहना, छठवा कल की मुरली से पूछ रहे, साल भर का नहीं, क्या करना है उसमें बिजी रहना, और सातवा उसका सौदा करना। ज्ञान रत्नों के साथ ये 7 चीजें करनी है, इसकी विस्तार से कल चर्चा की थी। ये एक एक अर्थात क्या क्या, खेलना अर्थात क्या, गिनना अर्थात क्या, सौदा करना अर्थात क्या, बिजी रहना अर्थात क्या, कार्य में लगाना अर्थात क्या, झूलना अर्थात क्या। ज्ञान रत्न सागर थालियां भर भर के दे रहा है, क्या करें रत्नों के साथ। सारे दिन भर में ये करने की बातें हैं, यदि हमने सुबह की मुरली के आधार पर ये 7 चीजें नहीं की तो फिर उदासी रहेगी, फिर दुख रहेगा, फिर किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। वही ज्ञान, बाप आए हैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने, विनाश सामने खड़ा है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, काम महाशत्रु है, तुम्हें सेवा करनी है, पतित पावन बाप आया है, तुम्हें अब घर वापस जाना है, फरिश्ता बनना है, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय और विजय, वही हजारों बार सुना है, और सुन के क्या हो गया, सुन हो गए, अपचन, इनडाइजेशन होता है, सुनाया इतना सुनाया कि सुनाने वाले ही थक गए। ये भी अंदर सोचते हैं, ये सुनने वाले अब तक क्यों नहीं थके, आश्चर्य लगता है, टीचर को भी आश्चर्य कि स्टूडेंट थके क्यों नहीं। तो नवीनता नहीं है इसलिए थकान है, क्रिएटिविटी नहीं है इसलिए थकान है, नया कुछ ढूंढ नहीं रहे इसलिए थकान है। ज्ञान रत्नों से ये सारी चीजें करनी है, बाबा ने कहा, वो हमने कुछ नहीं की इसलिए थकान है। कितना खेला, कितना झूले, कितना पालना की, स्वयं की पालना ज्ञान से करनी है। किसी सीनियर, कोई सीनियर हमारी पालना करे ये एक्सपेक्टेशन जूनियर्स रखे तो दुख ही मिलेगा, कौन किसकी पालना करेगा। हमें स्वयं की पालना करनी है, ज्ञान से, योग से। बड़े हमारी पालना करें ये कामना, ये एक्सपेक्टेशन, अभिलाषा रखना अंततोगत्वा दुख ही देगी, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी पालना कर सके, क्योंकि हमसे ज्यादा हमको और कोई जानता नहीं। मेरी जो डीपेस्ट डिजायर है, सबसे गहरी इच्छा, वो कोई नहीं जान सकता। दो व्यक्ति जो आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, 40 साल साथ रहते हैं, उसके बाद में भी क्या वो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे पूर्ण तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया? पति पत्नी सारा जीवन एक साथ गुजारते हैं, पर क्या ये कह सकते हैं मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने पति को पूरी तरह जानता हूं, जानती हूं? नहीं कह सकते। बहुत सारी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रह जाती है। तो स्वयं स्वयं को स्थिर करना, स्वयं स्वयं की ज्ञान से पालना करना, किसी को भी अपनी बैसाखी नहीं बनाना। स्टैंड अलोन, अकेले खड़े रहना है। किसी का आधार लेने की कोशिश की, किसी को संबल बनाने का प्रयत्न किया कि गिरे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। तो जैसे हमने कहा, यहां पर 12 चीजें, 12 बातें या 12 समान बाबा ने आदि रत्नों को दिए। सबसे पहला इन आदि रत्नों को कहा विशेषज्ञ। क्या कहा? विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट बनना है। बनेंगे, देखेंगे, करेंगे, ये गे की भाषा खत्म करनी है। आप सबको हम एक काम दे रहे जिस पर सबको चिंतन करना है, होमवर्क। अपनी डायरी में नोट करके रखो, पुरुषार्थ की भाषा की त्रुटियां। जैसे ये एक भाषा की त्रुटि, कौन सी भाषा? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये भाषा बाबा को पसंद नहीं है। ये भाषा का दोष है, पुरुषार्थ की भाषा का ये दोष है, डिफेक्ट है। ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो बाबा हमेशा कहते हैं, उसकी लिस्ट एक बनानी है। सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, एकदम नहीं आ जाएगा कोई भी चीज। कौन कौन सी इस तरह की बातें बाबा ने कही है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये एक हो गया गे की भाषा। ऐसी और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बाबा कहते हैं नहीं चाहिए? दूसरा एक उदाहरण, कभी कभी की भाषा, वो नहीं चाहिए बाबा को। इस तरह से आप सोचो इसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो बाबा ने यहां बताई है, क्या बनना है तुमको? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ अर्थात स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट। किसमें बनेंगे? उधर होता है ना, मेडिकल में आजकल स्पेशलिस्ट चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर थोड़े कम जाते हैं, पर स्पेशलिस्ट, किसमें स्पेशलिस्ट है वो देखा जाता है ज्यादा। तो इस स्पिरिचुअलिटी में भी हमें क्या बनना है? स्पेशलिस्ट बनना है। किसमें बनेंगे? ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में, और सहयोग लेना देना। बहुत बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है कि करना तो सभी है, पर कुछ कुछ बातें ऐसी हो कि जिसमें हम एकदम मास्टर हो। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसी हो कि उसमें हम एकदम फॉर्म, एकदम मास्टर हो। ऐसा नहीं कि बाकी चीजें हमको पता नहीं है, ऐसा नहीं कि योग कर रहे तो हमने बाकी सब छोड़ दिया, परंतु ये जो विषय है, जैसे ज्ञान ले लिया, उसका चिंतन ले लिया, वो एक हो गया। योग हो गया, योग के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रयोग करने में, कराने में, पुरुषार्थ करने में, पुरुषार्थ कराने में, ये भी एक एक्सपर्टीज है स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में हमने देखा है कई लोगों को सेवाओं में इतनी नवीनता लाते हैं। कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं कि आए दिन ऐसे ऐसी नए नए प्रोग्राम्स करते हैं कि एक चीज ना मिले दूसरी चीज से। जैसा पहले किया था ऐसा अब नहीं करेंगे, इसमें नवीनता हो। नवीनता लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। जैसे एक जैन गुरु ने अपने एक शिष्य को बुलाया और पूछा कि शिष्य कौन, तो उसने कहा शिष्य वो है जो ये कहे, ये अनुभव करे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म का है जैन एक ब्रांच। तो गुरु एकदम खुश हो जाता है, वाह कितना अच्छा उत्तर दिया तुमने शिष्य, अर्थात जो तुमने उत्तर दिया ना बस यही सबसे करेक्ट उत्तर है। तो शिष्य भी खुश हो जाता है। दूसरे दिन उसको फिर बुलाता है गुरु और कहता है अब फिर बताओ कि शिष्य का क्या अर्थ है। तो वो फिर से अपना वही जो कल सुनाया था आज सुनाता है, शिष्य अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छति। वो कहते हैं मूर्ख ये भी कोई उत्तर है? तो कहते हैं गुरु जी कल आपने ही तो ये उत्तर दिया, तो मेरी बहुत स्तुति की थी, आज तो आप ऐसा क्यों कह रहे? वो कहते थे कल जो तुमने उत्तर दिया था वो स्वस्फूर्णा से दिया था, वो सहज निकला था, आज तो तुम्हारा रटा रटा आया है, जो कल दिया वही आज दे रहे हो, इसके लिए आज के लिए ये उत्तर गलत है, कल वो राइट था आज नहीं। बाप में निश्चय हो, ड्रामा में निश्चय हो, स्व में निश्चय हो, यह है निश्चय बुद्धि, ये उत्तर कल दिया था आज दूसरा चाहिए, सोचा ही नहीं कुछ दूसरा, वही जो रटा रटाया उत्तर, मुरली में प्रश्न है उत्तर है, क्या उत्तर है जो ही जो बाबा ने कह दिया, सोचा ही नहीं कि और भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी मुरलियां जिसमें इसी प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हुए है। वही शिवरात्रि की सेवा लास्ट टाइम जो की थी ना, इस टाइम भी वही करो, वही करो मतलब सोचने का काम खत्म। जैसे उसको बुलाया था वो प्रोग्राम किया था वैसा ही प्रोग्राम इस टाइम करना है, सोचने का काम खत्म, सोचना ही नहीं है अभी। पर जब ये सोचे कि नहीं इस टाइम वो नहीं करेंगे जो हमने पिछली बार किया था, कुछ तो नया चाहिए, जब सोचना थोड़ा कठिन काम है दुनिया का सबसे कठिन काम, थोड़ा नहीं, थिंकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। सोचना ही नहीं चाहता है, जो चल रहा है वो चलने दो चलने दो चलने दो, मुरली जैसे लिख रहे हैं बस वैसे ही लिखना चालू है, उसमें लिखने में भी नवीनता नहीं है, सुनाने में भी नवीनता नहीं है, वही जैसे सुना रहे थे वैसे ही सुना रहे हैं, सुनाने में भी नवीनता, पढ़ाने में भी नवीनता, पढ़ने में भी नवीनता, सेवाओं में नवीनता, धारणाओं में नवीनता, योग में भी नवीनता, योग वही चालू है जो 10 साल पहले सुना था, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, जो कमेंट्री सुनाई थी सेंटर में बहन जी ने वही कमेंट्री अभी तक चल रही है, उसमें कुछ भी नया एडिशन नहीं हुआ है, कोई भी इमेजिनेशन कोई भी विजुअलाइजेशन नया नहीं लाया है, वही मैं आत्मा शांत स्वरूप किरणें फैल रही है। बाबा ने कहा पिकनिक करो, कभी यहां जाओ कभी वहां जाओ, कभी पहाड़ी पर जाओ वहां बैठकर इनको सकाज दो उनको सकाज दो, उसमें कितनी नवीनता लाई है, हर दिन का योग नया हो, वो नहीं जो कल किया था आज नया, हर दिन का नुमा शाम का योग वो ना हो जो सुबह किया था, हर दिन नया, हर क्लास नहीं हर चिंतन नया। भगवान के घर में ज्ञान की कमी नहीं है कि जो हम कुछ ही पॉइंट्स पकड़ के बैठे हैं और उसी को सुनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो बाबा ने कही है क्या बनो, विशेषज्ञ बनो। कब बनो? अब बनेंगे करेंगे देखेंगे, ये भाषा नहीं, गे की भाषा बाबा को पसंद नहीं, अब भी विशेषज्ञ बनो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अपना महत्व जानो, सेकंड पॉइंट है महत्व। बाप तुम्हारा जितना महत्व जानता है उतना तुम नहीं समझते हो, बाप समझते भी है परंतु तुम भी समझते हो परंतु याद नहीं रखते, जानना भी है और याद भी रखना है। क्या याद रखना है? महत्व किसका? खुद का। ये अहंकार नहीं स्वमान है, स्वाभिमान है, अस्मिता है, स्वयं के महत्व को जानना। दो ऐसे इमोशंस हैं मनुष्य के जो उसे एकदम नीचे गिरा देते हैं, पहला है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, और दूसरा है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। सेल्फ विक्टिमाइजेशन में पेशेंट अपने आप, व्यक्ति अपने आप को दोषी समझता है, अपराध भाव से जीता है, गिल्ट फीलिंग, गिल्ट कॉन्शियसनेस, मेरी गलती है, मेरे वजह से हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं गया इसके वजह से सब ऐसा हो गया, खुद ही को दोषी मानता है। ये दोनों भाव इतने खतरनाक है क्योंकि इन दोनों में स्वमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, गिराने वाले हैं। सोचो एक व्यक्ति जो अपराध भाव में जी रहा है, क्या वो पुरुषार्थ कर सकेगा? एक व्यक्ति है जिसने, जिसको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी का खून हो गया, वास्तव में उसने किया नहीं है, खून किसी और ने किया है, परंतु उसको ऐसा लगता है और सारा, और वो छूट चुका है, पुलिस को किसी को पता नहीं, वो वहां से फरार हो गया। पर क्या यह व्यक्ति कभी खुश हो सकता है? क्योंकि अपराध भाव है अंदर, मेरी वजह से, मेरी वजह से। आइंस्टाइन बहुत दुखी रहा जीवन में, अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्यों? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम फूटे, उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैंने ये जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी और ये सारा जो खोजा, ये अमेरिका, ये वैज्ञानिक इस काम में लगाएंगे जिससे हजारों लाखों मर गए। उससे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहोगे अगले जन्म में, वो कहता है कि मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है, मैं अगले जन्म में प्लम्बर बनूंगा, बिल्कुल छोटा सा छोटा, और वही काम करूंगा, क्योंकि जो चोट दिल पे लगी, इतने असहाय, इतने निरपराध, इतने निरागस लोग मारे गए, वो सोच रहा था ये सब मेरी वजह से हुआ, जैसे क्योंकि मैंने हाथ बटाया उस खोज में जिससे बॉम्ब बने, दुखी था वो। तो ये दो इमोशंस ऐसे हैं, अपराध भाव और गिल्ट कॉन्शियस, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मेरी वजह से हुआ, इसका करियर मेरी वजह से खराब हुआ, इसके साथ खराब जो हुआ उसका दोषी मैं हूं, ये जो भाव है। एक तो है दूसरों को ब्लेम करना, वो दूसरी बात है, ब्लेमिंग अदर्स, इसने किया, इसने किया, इसने किया, पर उसके अपोजिट भी दूसरा है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। और हम देखते हैं कई लोग इसी में जी रहे हैं कि मेरे वजह से यज्ञ का इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये भाव से वो मुक्ति नहीं हो पा रहा और उसी में डूबा हुआ, इसी शोक में, इसी दुख में। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे आ रहे हैं और हमसे आगे जा रहे हैं, और हम इतने सालों से और पीछे हैं, ये अभी अभी आए गए और आगे चले जा रहे हैं, जेलसी का भाव है उसमें। तो बाबा ने कहा इस मुरली में, अपने महत्व को समझो, जानो, समझो, जानो, और याद रखो महत्व को जानना, कि मैं कौन, मेरा महत्व क्या। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, आई एम इन कॉम्पिटिशन विथ माई सेल्फ, द वन आई वॉज यस्टरडे, जो मैं कल था बस उसी के साथ मेरी कॉम्पिटिशन है, मेरी किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। क्योंकि हर आत्मा अलग है, हर आत्मा के संस्कार अलग है, हर आत्मा किस घर से आई है, किस देश से आई है, किस प्रांत से आई है, किस संस्कृति से निकल कर आई है, और कौन से संस्कार लेकर आई है, और पता नहीं पिछले जन्मों में क्या थी। एक सेंटर है जिसमें छोटी सी कन्या आ गई, ठीक है, अब सब लोग सोचते हैं ये छोटी कन्या क्या करेगी, पर हो सकता है वो कन्या बहुत बड़ी ऋषि है किसी जन्म की, हो सकता है प्रकांड पंडित रही है, हो सकता है बहुत बड़ी तपस्विनी रही है, तपस्वी रही है, और इस जन्म में आपके यहां आ गई, तो उसको तो बस अवसर की तलाश है, अवसर मिला और वो निकल गई आगे। तो हर एक आत्मा अलग है, किसी के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, और हर एक यूनिक है, हर एक केवल यूनिक नहीं, ऐसे कहते हैं हर एक मास्टरपीस है, ईच सोल इज अ मास्टरपीस, उसके जैसा पीस इस संसार में और कोई नहीं है। तो दूसरी बात है, बाबा ने आदि रत्नों से कहा, अपने महत्व को समझो। तीसरा पॉइंट, बीती को बीती करो। जब बीती को बीती करोगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों उमंग उत्साह से भर जाएगा। पास्ट को भूल नहीं पाती है, क्योंकि पास्ट में अज्ञान का जीवन छोड़ दो, ब्राह्मण जीवन में ही इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई है, ब्राह्मण जीवन में ही कुछ ऐसे घाव जख्म है कि अब तक भरे नहीं है। ब्राह्मण जीवन के जख्मों की बात कर रहे, अज्ञान काल के वो तो भूल चुके, परंतु वो भी भूलना कठिन होते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में कुछ कुछ ऐसी बातें हुई है कि उसमें से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक माता आए थे हमारे पास, उसको अजीब सी बीमारी थी, वो गर्दन ऐसे 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 हिलाते रहती थी नॉन स्टॉप पूरी रात बिना थके, और उसको कुछ कुछ झटके आते थे बीच बीच में। सारी टेस्ट सब कुछ कर चुके, कहीं कुछ भी नहीं, ये सब क्या था। बहुत उसके काउंसलिंग सेशंस हुए, उसमें पता चला कि बचपन में उसका कोई एक दूर का कजिन ब्रदर था, उसके द्वारा फिजिकल असॉल्ट बहुत छोटी उम्र में, और वो उसी ट्रॉमा के साथ बड़ी हुई और किसी को बता नहीं पाई। बाद में ज्ञान मिल गया, ज्ञान में आगे चल गई, वो सारा दब गया, पर अभी अजीब सी जो सप्रेशन हुआ वो किसको बताएगी। और उसका ये शरीर पर असर था, सोमेटाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसमें शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, बीमारी मन में होती है परंतु शरीर में दिखती है, और अजीब अजीब हरकतें करता है उसमें व्यक्ति। पूरी रात गर्दन ऐसी इधर 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 इधर, पूरी रात नॉन स्टॉप बिना थके, और कुछ कुछ नया नया होते रहता था उसको। तो ये सारे जो सिम्टम्स थे वो उस दमित भावना के थे, उससे वो मुक्त नहीं हो पाई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके सेशंस वगैरह चालू हुए, थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। पास्ट को भूलना अर्थात केवल ऐसे कहने से नहीं होगा, उसको हम याद नहीं करेंगे याद नहीं करेंगे याद नहीं करेंगे, नहीं, ये भूलने की विधि नहीं है। उसको देखना और उसको न्यूट्रलाइज करना, दबा के नहीं रखना, जितना दबाओगे उतना वो निकलेगा। फिर अमृत वेला कम से कम 5 मिनट, यदि कुछ दुखद घटनाएं हैं उनको साक्षी होकर देखना कि ये हुई है और उनको मैं देख रहा हूं, क्योंकि उन दुखद घटनाओं के साथ हमारा जबरदस्त एक भावनात्मक अटैचमेंट है। वो जैसे ही याद करते हैं उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। वो रुलाने वाली घटना है अभी याद आ गई तो तुरंत आंसू आ जाते, वो क्रोध वाली घटना है अभी याद आ गई, बीच में 10 साल हमने प्रैक्टिस की मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परंतु वो घटना अभी याद आ गई एकदम क्रोध, बीच में हमने 10 साल प्रैक्टिस की मैं शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर आत्मा हूं, परंतु उस समय बदले का भाव था उस आत्मा के प्रति, 10 साल के बाद वो आत्मा अचानक सामने आ गई, अचानक बदले का भाव फिर जागृत हो गया। क्या हुआ, वो बीच का इतना सारा अभ्यास वो कहां चला गया, कहां गया, वो खाली दब गया था, नष्ट नहीं हुआ था। और नष्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ही विधि है, साक्षी भाव, जबरदस्ती उसको आंखों के सामने लाना और देखना। मन कहेगा इसको क्या देखना, ये तो बात हो गई, परंतु है, साक्षी होकर उसको देखना। अमृत वेला, केवल अमृत वेला, सारे दिन भर देखोगे तो उस सिचुएशन के साथ आइडेंटिफाई हो जाओगे और फिर वही भाव प्रकट होंगे। इसके लिए केवल अमृत वेला, पावरफुल योग की अवस्था में, बीज रूप बिंदु रूप स्थिति में देखना कि ये हुआ था और अभी इसका मुझ पर कोई असर नहीं। उसके पहले योग चालू है, उसको बीच में देखा, फिर से योग चालू कर देना, बीच में डिटैच, क्योंकि उसमें जो अटैचमेंट है वो सबकॉन्शियस लेवल पर है। सारे दिन भर कितने भी संकल्प करो, मैं उसको भूल जाऊंगा, उसको भूल जाऊंगा, इस व्यक्ति को भूल जाऊंगा, ये अच्छा नहीं, ये अच्छी नहीं, परंतु जितना सोचेंगे उतना ही ज्यादा अटैचमेंट होगा। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं इसको, जिससे दूर हो जाना चाहते हैं उसी से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, ठीक है, रास्ता बहुत चौड़ा है और रास्ते के दूर एक बाजू में पत्थर रखा हुआ है, रास्ते पर ही है, उसकी साइकिल जा सकती है, पर वो सोचता है ये पत्थर से मैं नहीं टकराऊंगा, ये पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, ये पत्थर से मैं बिल्कुल नहीं टकराऊंगा, ये पत्थर से तो रास्ता इतना ज्यादा, मैं क्यों टकराऊंगा इस पत्थर से, सोचते जाता है, साइकिल अपने आप उस पत्थर की ओर अट्रैक्ट होती जाती है, सोचता है कि मैं नहीं टकराऊंगा और सीधा जाके टकरा जाता है, जबकि रास्ता बहुत चौड़ा खाली था। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। उल्टा ही हो गया, सोच रहे थे ये व्यक्ति अच्छी नहीं है, ये इसके साथ से मैं दूर रहूंगा, ये संकल्प भी और खींच रहा है उसकी तरफ। निगेटिव अटैचमेंट है ये। एक है पॉजिटिव अटैचमेंट जिससे मोह है, एक है निगेटिव अटैचमेंट। कंस को कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखता था, रावण को बस राम ही दिखता था, लास्ट में पानी पी रहा है उसमें राम, एक अटैचमेंट हो गई निगेटिव। तो ये भी ऐसा ही है। तो दबाना नहीं किसी भी भाव को, निकलने दो बाहर। हम सोचेंगे इतना खराब भाव है ये, तो हम तो इतने पवित्र है, फिर ये भाव तो कितना गंदा है, पर आने दो और देखो, साक्षी भाव ही उसको नष्ट करेगा और कुछ भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो तीसरा है बीती को बीती कर देना। बीती हुई सारी घटनाओं को जैसे देखना, छाया है, शैडोज, बहुत सुंदर शब्द है शैडो, छाया है, आई और चली गई। अब क्यों हम सोचे? तो ये बात। उसके बाद में चौथी, साधारणता नहीं। आदि रत्नों से मुलाकात हो रही है, बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्माओं में साधारणता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे बोल साधारण नहीं होने चाहिए, परंतु चलते चलते कभी कभी साधारण अनुभव होता है, परंतु अनुभव हो, परंतु फिर भी ये सोचो कि मैं श्रेष्ठ हूं। आदि रत्नों से मुलाकात हो रही है, साधारण समझना नहीं है, अनुभव होता है कि सब साधारण है, परंतु ये सोचो कि मैं श्रेष्ठ हूं। साधारणता को समाप्त कर देना है। हमारे छोटे छोटे कर्म भी महान कर्म हो, हमारा सोना भी ऐसा हो कि कोई देखे तो लगे योगी सो रहा है, चलना फिरना उठना घूमना फिरना बैठना सब कुछ, यदि गलती होती है तो रात को बैठ के फिर सोचो, फिर ठीक करो, रोज ठीक करते जाना, लंबी यात्रा है। तो साधारणता नहीं, चौथा। पांचवा, तुम विशेष हो। पहला कहा था विशेषज्ञ, यहां बाबा ने कहा विशेष हो। इस यज्ञ में तुम विशेष हो, आदि रत्नों से मुलाकात। इस यज्ञ में जो पुरुषार्थी आत्माएं, उनमें से भी तुम विशेष हो। ये अलौकिक परिवार में तुम आत्माएं, इस परिवार में विशेष हो। मैं स्पेशल आत्मा हूं पूरे परिवार में, मेरे जैसा यहां कोई नहीं। ये समान है, विशेष का समान। आई एम स्पेशल सोल, पहला बताया था स्पेशलिस्ट बन जाओ, अभी बता रहे स्पेशल बन जाओ। यदि मैं स्पेशल हूं तो मेरा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, यदि मैं स्पेशल हूं तो किसी से जेलसी नहीं, यदि मैं स्पेशल हूं तो इन्फीरियोरिटी नहीं, वो हीन भावना नहीं, वो अपराध भाव नहीं, इन सब से मैं निकल चुका हूं। वो अंधकारमय रात थी मेरे जीवन की, खत्म हुई। सोचो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके बीच में जो कुछ हुआ वो हुआ और मैं इस अंधेरी रात से बाहर आ गया हूं। क्या सोचना है? ये ए पॉइंट था जिससे ये रात चालू हुई, ये बी पॉइंट, रात पूरी हुई, अब मैं इस विकार से, इस संस्कार से बाहर हूं। ये रात का तिमिर समाप्त हुआ। विशेष। छठवीं पॉइंट, बुजुर्ग। क्या समझना है अपने आप को? बुजुर्ग, बुजुर्ग अर्थात बूढ़ा, अनुभवी, मैच्योर्ड। तो यहां पर बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बुजुर्ग अर्थात जो छोटों को राह दिखाए, बुजुर्ग अर्थात जो छोटों को रास्ता दे, बुजुर्ग अर्थात जो राय दे, बुजुर्ग अर्थात जो खुद को परिवर्तन करे। ये ना समझे, क्योंकि छोटे तो नटखट होते हैं, वो बदलेंगे नहीं, बुजुर्गों का काम बदलना है। बुजुर्ग नहीं, दूसरे नहीं सुनते, आपका काम है कि उनको सुनने लायक बनाना, ये आपका काम है, और उनको समाना। तो ये एक आपको दूसरा होमवर्क दे रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, आध्यात्मिक बुजुर्ग, ओल्ड एंड मैच्योर। इंग्लिश मुरली में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ओल्ड एंड मैच्योर। खाली ओल्ड नहीं कहा है बुजुर्ग, बुजुर्ग अर्थात अदरवाइज ओल्ड, पर ओल्ड एंड मैच्योर। तो जो मैच्योर्ड व्यक्ति होता है, जैसे कोई दादाजी है, अभी उसके जो नाती पोती जो होते हैं उसकी दाढ़ी खींचते हैं, उसके बाल खींचते हैं, तो वो उनको मारता है क्या? क्या समझता है? वो समझता है छोटे है, नटखट है, नादान है, अनजान है, परवश है, छोड़ो ना, गुस्सा नहीं करता है, शांति से उनको स्वीकार करता है। तो हम भी क्या है, स्पिरिचुअली मैच्योर्ड सोल्स, बुजुर्ग आत्माएं। बुजुर्ग अर्थात सबकी कमियों को समा लेने वाले, बुजुर्ग अर्थात रूठना नहीं, रूसना नहीं, नाराज होना नहीं। जो बार 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 रूठता है, नाराज होता है, उसे बुजुर्ग नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअली मैच्योर्ड पर्सनैलिटी मीन्स सबको स्वीकार कर लेता है। ये सिक्स्थ, सेवेंथ, बाप की स्मृति दिलाने वाले। बाबा ने यहां दीदी और दादी का उदाहरण दिया है, यहां से दूसरा पैराग्राफ चालू हो रहा है। दीदी और दादी का उदाहरण दिया है कि दीदी और दादी ने कभी ये नहीं कहा कि हम दीदी दादी है, हमसे सीखो, आओ। उनको देखकर ही ऐसा लगा कि बाप की याद आई। क्यों? क्योंकि जिम्मेवार समझा स्वयं को। वो लोग शिव बाबा नहीं है, वो ब्रह्मा भी नहीं है, परंतु निमित्त थी। वैसे तुम भी स्वयं को निमित्त समझो, वैसे तुम भी स्वयं को जिम्मेवार समझो कि हमको ना देखे वो दिखाई दे, हम में वो दिखाई दे। इतना रग रग में ईश्वरीय प्रेम हमारे भरा हो कि लोगों को लगे, संसार की आत्माओं को, कि ये अल्लाह लोक अलौकिक आत्माएं हैं संसार की। बाबा तो दादियों को, आदि रत्नों को कह रहे हैं कि जैसे ये दीदी दादी है, बाकी जो है वहां पर आदि रत्न, उनको कह रहे हैं कि आपको देखकर ऐसी भासना आई। यहां और एक बहुत सुंदर बात है ब्रह्मा बाबा की, बगुलों के क्या नहीं, बगुलों के क्या लगेंगे तुमको, यहां ठुंगे, बगुलों के ठुंगे। ठुंगे किसको कहते हैं? जो पक्षी होता है ना, जो चोच मारता है, पेकिंग्स इंग्लिश में कहते हैं, पेकिंग, चोच मारता है वो। वैसे संसार में रहते हुए वातावरण खराब है, वाइब्रेशंस अच्छा नहीं है, बगुलों के ठुंगे तो लगेंगे, पर ब्रह्मा बाबा कैसे रहे न्यारे और प्यारे, इसलिए फॉलो फादर। संपूर्ण जो बना जाता है वो अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। सब कुछ विरोध में चल रहा है, लोग खींचातान कर रहे हैं, कोई नीचे खींच रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई ग्लानी कर रहा है, और हम अचल अडोल होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ विरुद्ध है, जैसे यज्ञ की शुरुआत में सब सब विरोध में थे, परंतु निश्चय था कि ये उसका कार्य है, मेरा कार्य नहीं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसकी थी यज्ञ में? क्या उसकी तुलना में किसी और की हो सकती है? कोई बहन या कोई भाई कह सकता है कि मेरे पास बहुत काम है? ऐसा नहीं कह सकता कोई। तो बाप की स्मृति दिलाने वाले, सेवेंथ पॉइंट है, बाप की स्मृति दिलाने वाले। हमें वो बनना है कि जिनको लोग देखे और उनको याद आए उस परमात्मा की. सेवेंथ, एट्थ स्तंभ, कौन सा स्तंभ? उमंग, उत्साह का स्तंभ बन जाना. क्या बनना? उमंग, उत्साह का स्तंभ. जिसको सबकी पालना करनी है, यदि उसमें ही उमंग उत्साह नहीं है तो पालना कैसे करेगा? और हर एक ये समझे कि मैं जगत माता हूं और जगत पिता हूं, मुझे सारे विश्व की पालना करनी है, हर एक आत्मा की पालना करनी है, क्योंकि संसार नरक में, संसार में दुख ही दुख, डूबे हुए हैं संसार की आत्माएं, कौन उनको बचाएगा? हमें ये काम करना है. उसके लिए हमारी अपनी स्थिति अप डाउन ना हो, हमारी अपनी स्थिति इतनी ऊंची हो और उसमें इतना उमंग उत्साह भरा हुआ हो. बाबा ने कहा उमंग उत्साह के स्तंभ बन जाओ. कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है, उमंग उत्साह के स्तंभ. जैसे शांति स्तंभ है, चारों ओर शांति फैलाता है, वैसे उमंग उत्साह का स्तंभ चारों ओर उमंग उत्साह फैलाए. कौन सा उमंग उत्साह है? तपस्या का उमंग उत्साह. कौन सा उमंग उत्साह? संसार के प्रति वैराग. यहां का विलासितापूर्ण जीवन हमारा नहीं है, हमारा तापसी जीवन है, वनवाह में है हम, जिसमें संसार को खुशी मिलती है. वो जो भोग और विलास है, हमारी खुशी देह में नहीं, हमारी खुशी आत्मा में है. नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ स्वमान या नौवां स्वमान जो बाबा ने दिया, उम्मीदों के सितारे. तुम क्या हो? बाप के उम्मीदों के सितारे. इसका कुछ ज्यादा वर्णन नहीं किया है. अगला है सागर. तुम्हें क्या बनना है? सागर. तीसरा होमवर्क, सागर से हम क्या क्या सीखते हैं. लेसन्स वी लर्न फ्रॉम ओशन. क्या क्या गुण सागर से सीखे जा सकते हैं, एक दो अभी बताएंगे. समाने का जो मुरली में बाबा ने कहा, सागर तुम सागर हो, सागर समान संभालो और रिफ्रेश करो आत्माओं को. उनकी कमी कमजोरी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसकी बात इधर फैलाना, उसकी बात उधर फैलाना, ये सागर के गुण नहीं है. सागर में कुछ भी डालो वो समा लेता है अपने अंदर. तो एक गुण है सागर का समाना. दूसरा, और जो गलत है उसको फेंक देना. और सागर में बहुत सारा हीरे मोती सब कहां होता है? हीरे तो नहीं, मोती वो सारा क्या होता है? गहराई में होता है. और सागर गहराई में शांत होता है, ऊपर से लहरें चलती है, लहरें उछलती रहती है. तुम भी मास्टर प्रेम के सागर हो, तुम्हारी भी लहरें उछलती रहनी चाहिए. अगले संडे की मुरली आने वाले. तुम भी मास्टर प्रेम के सागर हो, तुम्हारी भी लहरें उछलती रहेगी. प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति की लहरें, पवित्रता की लहरें, तुम्हारी लहरें उछलती रहनी चाहिए. तो सागर, सागर बनना है और सागर में डूबना है और सागर की गहराई में जाना है. कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो. मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो. अंदर जाना है, बहुत अंदर, बहुत अंदर, बहुत अंदर. मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो इसलिए इस सागर में डूबते जाना है और इस सागर से बहुत कुछ सीखना है. जैसे बाप सागर है और सिंधु है और सब कुछ समा लेता है, सबकी कमियां समा लेता है. उसके सामने हिस्ट्री हॉल में कितने भाई बहन बाबा से डायरेक्ट मिलते थे, और वो जिन्होंने बाबा से मिले और टोली ली और बाबा ने जिन्हों के लिए 5-5 मिनट बोला, वो बाद में बाबा को छोड़कर चले गए. क्या भगवान को उस समय पता नहीं था ये मुझे छोड़ के जाने वाला है? पता था कि नहीं पता था? क्या उससे कुछ छिपा है? भगवान से मिलन मना रहे हैं, बाबा उनको टोली दे रहे, कह रहे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम ऐसे हो, तुम यहां हो, ऐसे वैसे बहुत उनकी महिमा कर रहे. और वही विदेशी और वही भारतवासी बाद में बाबा को उसने छोड़ दिया. तो उस समय भी तो बाबा को पता था. पता होने के बाद भी सागर क्या करता है? सब अपने अंदर समा लेता है. वैसे सागर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इसने ये किया उसने वो किया, ये सब पर चिंतन पर दर्शन में जाना नहीं। सागर क्या बनना है? सागर। फिर उसके बाद 11वीं पॉइंट, उड़न खटोला। उड़न खटोला अर्थात कौन बताएगा? एक है उड़न खटोला, एक है उड़न तस्करी, एक है पुष्पक विमान। अब इनके अंतर बताओ। एक है अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट UFO, एक है फ्लाइंग सॉसर। उड़न खटोला अर्थात हर वो चीज जो वाहन का काम करे, हर वो चीज जो वाहन का काम करे, इसको मोस्टली इंग्लिश में कहा जाता है मैजिक कारपेट, जो कि अरेबियन नाइट्स में आता है। मैजिक कारपेट पे बैठो और चलो उड़ के कहीं पर भी। परंतु इसके अंदर उड़ने वाली बहुत सारी चीजें जिसमें बैठा जा सकता है, ऐसी एक चीज है उड़न खटोला। मतलब ये भी हो सकता है कि जो रस्सी होती है वो एक झूले जैसा होता है, उसमें बैठो और जाओ। तो बाबा ने कहा है आदि रत्नों को तुम सब कौन हो, जिस भी स्थान पर पहुंचो आत्माओं को उड़ाने वाले हो, ऐसे उड़न खटोले तुम हो, मैजिक कारपेट। दूसरा होता है उड़न तस्करी। उड़न तस्करी नाम 1950s में था, फ्लाइंग सॉसर बाद में नाम चेंज हो गया, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट उनको कहा गया। अभी जो कहा जाता है कि जो दिखाई देता है कहां से आया पता नहीं, और पुष्पक विमान तो सतयुग में, पर वो भी एक प्रकार से उड़न तस्करी है, उड़न खटोला ही है। उड़न खटोला अर्थात जो उड़ता है। तो तुम सब कौन हो? स्पिरिचुअल उड़न खटोले, स्पिरिचुअल मैजिक कारपेट्स। तो जहां पर भी जाओ आत्माएं उड़े, ऐसा नहीं जहां हम जाए आत्माएं और ही ज्यादा दुखी हो जाए। जहां गए, किसी किसी का स्वभाव ऐसा है कि जहां जाते हैं दो तीन को घायल करके आते, शब्द में ऐसा जादू है, तेज है कि जहां जाते हैं जिसको दो तीन शब्द बोलते तो दो दिन तो डिप्रेशन में चले जाता है सामने वाला। एकदम सामने वाले को सीधा डिप्रेशन में भेजने का सामर्थ्य, अलौकिक सामर्थ्य होता है कि ऐसे शब्द ही ऐसे बोल देते कि बेचारा कोई कोई ज्ञान ही छोड़ के चले जाते। इतना पावरफुल इंजेक्शन दे देते उसको। तो उड़न खटोला अर्थात उड़ाने वाले, उमंग उत्साह में लाने वाला, कोई डिप्रेशन में उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने वाले, ऐसे स्पिरिचुअल उड़न खटोला बनना है। यह है 11वीं लास्ट पॉइंट, स्नेह की दृष्टि देने वाले, मदद का हाथ देने वाले, बढ़ाने वाले। स्नेह की दृष्टि, बाबा ने यहां पर कहा तुम खाली खड़े रहो, मेले बहुत कर लिया, वो सब कर लिया, अब खाली खड़े रहते हो आदि रत्नों से कह रहे, और स्नेह की दृष्टि देते हो सबको, और आत्माओं को मदद का अनुभव होता है। और भी दो तीन बातें हैं, तो ऐसी ये टोटल 12 बातें कहो या समान कहो। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तुम सब कौन हो? विशेषज्ञ। अगर नहीं है तो बनना है, बनेंगे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे नहीं, अभी नाउ एक्सपर्ट बनना है। एक फील्ड चुन लो कि सेवा, वैसे तो सब में एक्सपर्ट बनने का पुरुषार्थ करना है, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ फ्यू, इंग्लिश में कहावत है। तो सब कुछ सीखने की कोशिश करना है, वो हर स्किल हम में हो जिससे सेवा हो। और सेंटरों पर तो ऑलराउंडर बनना बहुत जरूरी है। मधुबन में तो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट की सेवा आपको करनी है बस, पर सेंटर में ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ करना है। उसमें आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए, नहीं आती है तो सीखो, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, कार ड्राइविंग, अकाउंट्स मैनेजिंग, एंकरिंग, स्पीच, मोटिवेशनल स्पीकिंग, सारी चीजें आनी चाहिए, सबकी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। कभी एंकर बनना पड़ेगा, कभी गाड़ी चलानी पड़ेगी, कभी प्रोग्राम मैनेज करना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मैनेजिंग ये सारी मैनेजमेंट वाली चीजें सब स्किल्स है, लिखना पड़ेगा, कोई लेटर तैयार करना पड़ेगा, लेटर राइटिंग, स्पीच, एंकरिंग, लेटर राइटिंग, कार ड्राइविंग से लेके, तो ये सारी स्किल्स है, कंप्यूटर, टाइपिंग, डीलिंग, लोगों से इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है इनको, ये सारी स्किल्स है, इनको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल्स। ऐसी 10 सॉफ्ट स्किल्स है, एक 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 हम में क्या कमी है, क्योंकि सेवाओं में बहुत काम आएगा ये सभी को, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपर्ट, दूसरा महत्व अपने, नहीं वो थर्ड, अपना महत्व समझना कि मेरा महत्व क्या है, अपने आप को ऐसा एकदम फालतू और कमजोर नहीं समझना, बड़ा समझना, बड़ा इन द सेंस अहंकार के रूप से नहीं, भगवान ने कहा है इसलिए। तीसरा, बीती से बीती को बीती कर दो, कब तक उसी को चिंतन करेंगे, वो शास्त्रों में दिखा है 12 साल शिव जी ने, वो शंकर जी ने, वो अपने क्या पार्वती का वो सती को अपने कंधों पर घूमते रहे, वैसे हम भी घूम रहे किसी को कंधे पर बिठा के, शव को, वो मर चुका है, वो इवेंट हो गया, वो घटना हो गई, परिस्थिति खत्म हो गई, पर हमने अभी तक उसको ढोए हुए घूम रहे, सोच रहे पता नहीं यहां गिरेगा कोई तीर्थपीठ शक्तिपीठ बन जाएगा। चौथा, साधारणता नहीं, नो ऑर्डिनरीनेस। पांचवा, विशेष, मैं विशेष आत्मा हूं। छठवा, बुजुर्ग, अच्छा सम्मान है ना ये कुमारों के लिए, छोटे कुमारों के लिए, मैं कौन हूं, बुजुर्ग आत्मा हूं, बड़ी आत्मा हूं, मैच्योर्ड हूं, सबसे बुजुर्ग आत्मा हूं, फोर फादर्स, पूर्वज हूं, प्रोजेनिटर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये सब अभी अभी आए हैं मेरे सामने, ऐसे सोचना, ठीक है। क्या सोचोगे, ये सब अभी अभी आए हैं, मुझे इनकी पालना करनी है, इनके बाप दादा मैं हूं, इनका बाप दादा तो अपने आप को बड़ा समझना। फिर है बाप की स्मृति दिलाने वाले, दूसरी आत्माओं को बाबा की स्मृति आए हमको देखकर। अगला, जैसे दीदी दादी का उदाहरण, ब्रह्मा का उदाहरण, फॉलो ब्रह्मा, एक चौथा टॉपिक दे रहे हैं आपको चिंतन के लिए, बगुलों के ठुंगे बगुलों के शांति से नहीं बैठने देते, कुछ ना कुछ चुबाते रहते हैं लोग, कांटों का जंगल है ना, तो सेंटर पे बैठे, मुरली क्लास पूरा हुआ, जैसे ही क्लास से बाहर कांटे लेकर ही खड़े हैं चुबाने के लिए ऑफिस में एंट्री की तो कांटे लेकर ही खड़े हैं, दो तीन कलीग्स और बॉस और सब लोग, ये आए और उसको चुबाओ, ये सोच रहा है मधुबन जाने का, उसको एक ऐसा काम दे दो कि मधुबन जा ही ना पाए, इसको रोक दो, कांटे लेकर खड़े तो बगुलों के ठुंगे, ऐसे 10 ठुंगे निकालना है चिंतन करके। नेक्स्ट नेक्स्ट, स्तंभ, कौन सा स्तंभ, उमंग उत्साह का स्तंभ, स्वयं को उमंग उत्साह में लाना है, डिप्रेशन से कौन उठाएगा खुद को, हम खुद ही उठाना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा, आओ मेरे हाथ दो मैं उठाता हूं, कोई आने वाला नहीं, ना ही किसी की इंतजार करना, प्रतीक्षा नहीं करना, खुद का दीपक खुद बनो, खुद का प्रकाश खुद बनो, अपनी मशाल खुद जलाओ। नेक्स्ट, उम्मीद के सितारे, भगवान ने अपनी उम्मीद मुझ पर रखी है, मुझे उम्मीदों का सितारा बनना है। नेक्स्ट, सागर बनना है, तो सागर की विशेषताएं लिखनी है, सागर, सागर किस किस ने देखा है, सबने देखा है, मन के सामने सागर को लाना है, देखना है सागर से मैं क्या सीख सकता हूं, वास्तव में सागर को देखना, जाना कभी और देखना कितना अनंत सागर बिखरा हुआ है और मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या कल्पना विजुलाइज करना, वो तो और ज्यादा शक्तिशाली है, या फिर चित्र भी देखकर सागर से क्या क्या सीखा जा सकता है उसकी लिस्ट बनाना। नेक्स्ट, उड़न खटोला, मतलब जहां जाए आत्माएं उड़े, ऐसा आध्यात्मिक उड़न खटोला हमें बनना है। लास्ट, स्नेह की दृष्टि देने वाले और मदद का हाथ बढ़ाने वाले, तो जो भी आए घृणा का भाव नहीं उनके प्रति, चाहे कैसी भी आत्मा हो। आज कहा ना फुल रहम, विरोध करने वालों पर भी फुल रहम, चाहे कितनी भी विरोधी हो कैसी भी हो, जिन्होंने बहुत सताया बहुत दुख दिया। महाराष्ट्र में संत हुए ज्ञानेश्वर, वो जब बचपन में थे एक आत्मा ऐसी थी उस गांव में कि जिसने उसको उसका लास्ट तक विरोध किया, बहुत सताया बहुत सताया बहुत सताया, पर लास्ट में जब उसकी वो शरण में आई तो उसको ऐसे माफ कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कितना बड़ा उदार दिल, फ्राक दिल, तो ऐसा बड़ी दिल कि जो सबको संभाले, सबके प्रति स्नेह की दृष्टि, चाहे कैसी भी हो, चाहे कितनी भी उसने हमारी गिलानी की हो, विरोध किया हो अभी तक, परंतु हमारी उसके प्रति स्नेह की दृष्टि हो। तो अभी ये 12 चीजों को हमको ऐसी आदत बनानी है ताकि यही अच्छी लगे फिर। पर ये चाहते नहीं है वो बंदर गड़बड़ करता है, नाराज होता है, जो कहानी में बताया। अच्छा, ओम शांति।